दिन भर तारीख 24 जुलाई दिन रविवार आपके साथ मैं अशोक कुमार। रियो ओलंपिक से पहले भारतीय कुश्ती को लगा झटका, नरसिंह यादव डोपिंग में हुए फेल।
देखो, नरसिंह यादव मेरे अंडर आज 15-16 साल से ट्रेनिंग कर रहा है। वो बड़े गरीब परिवार से बच्चा बिलोंग करता है और जिस ढंग से ईमानदारी से उसने पहलवानी की है, मेरा दिल नहीं मानता कि उसने किसी प्रकार का भी डोप लिया है।
राजनाथ सिंह का कश्मीर दौरा मुकम्मल, कहा पहले हालात सामान्य हों फिर जिससे जरूरी होगी करेंगे बात। और संडे दिन भर में मिलिए अभिनेता अनंत शर्मा से, जो सुल्तान में अपने किरदार के लिए तारीफें बटोर रहे हैं और एक्टिंग को क्रिकेट से साध रहे हैं।
कोई भी टोटल ऐसा नहीं है जो कि बैट से चेज नहीं दिया जा सकता, तो मैं मेरिट पे, क्योंकि मेरी तैयारी हमेशा मेरिट की रही है और ये काम मेरिट का ही है।
लेकिन सबसे पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार इकबाल अहमद से। अभी अभी मिली जानकारी के अनुसार नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने इस्तीफा दे दिया है। उनको समर्थन कर रहे दो पार्टियों के समर्थन वापसी के बाद उन्होंने ये फैसला लिया। भारतीय पहलवान नरसिंह यादव डोप टेस्ट में फेल हो गए हैं। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी यानी नाडा के डायरेक्टर जनरल ने रविवार को इसकी जानकारी दी। वो रियो ओलंपिक में 74 किलोग्राम भार वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले थे। जर्मन में अधिकारियों का कहना है कि शुक्रवार को म्यूनिख में गोलीबारी कर 9 लोगों की हत्या करने वाले डेविड अली सोनबोली पिछले एक साल से इस हमले की तैयारी कर रहे थे। बवेरिया के पुलिस प्रमुख रॉबर्ट हाइमबर्गर ने इसकी जानकारी देते हुए कहा, हमलावर एक साल से इसकी तैयारी कर रहा था। इसका मतलब है कि पिछली गर्मियों से ही इस हमले की तैयारी चल रही थी, बवेरिया के पुलिस प्रमुख के शब्द। उन्होंने कहा कि हमलावर ने इस्तेमाल में आई ग्लॉक पिस्टल को इंटरनेट के जरिए ऑनलाइन खरीदा था, जिसको एक खास सॉफ्टवेयर के जरिए ही किया जा सकता था। पुलिस के एक प्रवक्ता ने कहा कि अभी तक इस बात के सबूत नहीं मिले हैं कि ये गोलीबारी किसी राजनीति से प्रेरित थी या हमलावर ने लोगों को चुनकर निशाना बनाया था। इस बीच जर्मनी के गृहमंत्री ने कहा है कि इस हमले के बाद वो जर्मनी में बंदूक से संबंधित कानून की समीक्षा करने पर विचार कर रहे हैं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में कल हुए बम धमाकों में मारे गए 80 से ज्यादा लोगों के अंतिम संस्कार की तैयारी की जा रही है। एक पहाड़ी पर बनाए गए नए कब्रिस्तान में कब्रें खोदी जा रही हैं। लेकिन इस बीच धमाके के बाद से लापता लोगों के रिश्तेदार अस्पतालों और मुर्दा घरों में उनकी तलाश भी कर रहे हैं। हजारा शियाओं के विरोध प्रदर्शन में कल बम धमाके हुए थे, जिसकी जिम्मेदारी चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट ने ली है। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगान ने एक दफा फिर मौत की सजा के लिए अपने समर्थन को दोहराया है। उन्होंने कहा कि यूरोपीय यूनियन इस बारे में क्या कहता है, इसकी परवाह किए बगैर अगर तुर्की की जनता मृत्युदंड चाहती है तो वो उसका समर्थन करते हैं। फ्रांस के एक टीवी चैनल से बातचीत करते हुए एर्दोगान ने कहा कि 53 सालों तक यूरोपीय यूनियन ने तुर्की को ईयू का सदस्य नहीं बनाया, लेकिन उसी दौरान उसके दूसरे कम विकसित देशों को ईयू में शामिल होने का मौका दिया। बांग्लादेश में पुलिस का कहना है कि उन्होंने चरमपंथी गतिविधियों में शामिल होने के शक में 4 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। 4 महिलाओं पर आरोप है कि वे इस्लामी संगठन जमातुल मुजाहिदीन के लिए बम विस्फोट की योजना बना रही थीं। बीबीसी समाचार।
स्वागत है आप सबका। आप सुन रहे हैं बीबीसी की हिंदी सेवा से कार्यक्रम दिन भर। ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी सुन रहे हैं लाइव, और आपके साथ मैं हूं अशोक कुमार। आज बात करते हैं सबसे पहले पहलवान नरसिंह यादव की, जिन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया लेकिन रियो जाने के लिए उन्हें कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी नामी पहलवान सुशील कुमार से। सुशील कुमार जिन्होंने बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक जीता और लंदन ओलंपिक में रजत पदक। बात सुप्रीम कोर्ट तक गई और फैसला नरसिंह के हक में आया और सुशील का रियो जाने का सपना टूट गया। लेकिन ये सपना अब शायद नरसिंह का भी पूरा नहीं होगा, क्योंकि डोप टेस्ट में वो फेल हो गए हैं। इस बारे में विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मलय नीरव। लेकिन उनके पास जाने से पहले जान लेते हैं कि इस मुद्दे पर आज किसने क्या कुछ कहा। सबसे पहले बात सुनते हैं नरसिंह यादव की ही, जो उन्होंने टीवी चैनल NDTV के साथ बातचीत में कही और खुद को निर्दोष बताया।
बिल्कुल, मैंने एहसास से कभी कुछ लिया नहीं है और जो भी है इन्होंने साजिश के खिलाफ किया है। बाकी मेरी भारतीय क्रिकेट संघ और ओलंपिक संघ का साथ देगा और जल्दी मैं इससे बाहर निकल आऊंगा। नहीं देखिए, अभी भी उसकी हेयरिंग वगैरह होगी और बाकी मैंने आज तक जब कुछ लिया नहीं, मैं निर्दोष हूँ तो मैं जरूर छूटूंगा। मुझे विश्वास है अपने गवर्नमेंट पे, तो सब कुछ ठीक है।
वहीं दूसरी तरफ सुशील कुमार के कोच रहे सतपाल ने कहा कि जब प्रशिक्षण शिविर में पहरा है, कोई वहां नहीं जा सकता, तो फिर साजिश कौन रचेगा?
जहां पे वो रहते हैं, जहां कैंप है, वहां आप कोई बाहर का आदमी जा नहीं सकता। और क्या वो मेरा नहीं, ये भारतीय कुश्ती संघ बताएगी इस बारे में। मैं इसमें कुछ नहीं कहना चाहूंगा, मुझे दुख हुआ क्योंकि मेरा सिर्फ एक ही मकसद था, चाहे ओलंपिक से मेडल आए, और 74 किलो हमारा बहुत मजबूत वजन था, चाहे वो सुशील ले आए चाहे नरसिंह ले आए। सुशील खेलता है तो सुशील कोई दिल्ली का थोड़ी है, वो सारे देश का है। नरसिंह खेलता है, नरसिंह के आज डोपिंग में आने से मुझे दुख है। मैं उससे मतलब मैंने जब सुना तो मेरे को इतनी परेशानी हुई कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये 10-12 दिन हमारे पास बचे, हमें मेडल के लिए योजना बनानी है, कैसे लड़ना है, तो वो सारी चीजें करनी थी।
उधर नरसिंह के कोच जगमाल सिंह ने भी अपने शिष्य को निर्दोष माना है। उन्होंने कहा,
और तो मैं इसीलिए मैं और सुशील ने भी ये चीजें कही थी कि जी अब हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे, कि क्योंकि हमने ओलंपिक में मेडल चाहे, चाहे सुशील का है चाहे नरसिंह का है। नरसिंह क्या छोटा सा बच्चा है क्या? वो इतना अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक, दो ओलंपिक, तीन ओलंपिक खेल चुका है, 40 बार 50 बार इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुका है। और फिर कोई भी व्यक्ति है, वो कोई भी है, चाहे सतपाल है, सुशील है या नरसिंह है, तो क्या नुकसान पहुंचा दिया था? आप एक चीज तो बता दो नुकसान, वहां पे जहां पे वो रहते हैं, जहां कैंप है, वहां आप कोई बाहर का आदमी जा नहीं सकता। और क्या वो मेरा नहीं, ये भारतीय कुश्ती संघ बताएगी इस बारे में। मैं इसमें कुछ नहीं कहना चाहूंगा, मुझे दुख हुआ क्योंकि मेरा सिर्फ एक ही मकसद था, चाहे ओलंपिक से मेडल आए, और 74 किलो हमारा बहुत मजबूत वजन था, चाहे वो सुशील लाए चाहे नरसिंह लाए। सुशील खेलता है तो सुशील कोई दिल्ली का थोड़ी है, वो सारे देश का है। नरसिंह खेलता है, नरसिंह के आज डोपिंग में आने से मुझे दुख है। मैं उससे मतलब मैंने जब सुना तो मेरे को इतनी परेशानी हुई कि ऐसा नहीं होना चाहिए था।
ये आपने दो बार सुन ली सतपाल सिंह की बात। हम जगमाल की बात आपको सुनवाएंगे, इससे पहले हम बात करते हैं मलय नीरव जी से, जो वरिष्ठ खेल पत्रकार हैं। मलय जी, आपने बात सुनी सबकी और कह रहे हैं कि वो निर्दोष हैं, और इसके अलावा जगमाल की बात हम सुनवाएंगे, लेकिन सतपाल कह रहे हैं कि जब पहरा था तो कैसे कोई साजिश कर सकता है। आपको क्या लगता है कि मुकाबले में उतरे बिना ही भारत के हाथ से एक पदक फिसल गया?
नज़र लग गई भारतीय कुश्ती को, भारतीय पहलवानों को, जिस प्रकार से पिछले 2 ओलंपिक से पदक जीतने के बाद और 1952 के बाद एक लंबे अंतराल के बाद भारत ने पदक जीता था, इस बार भी पूरी उम्मीद थी, निश्चित रूप से नरसिंह से उम्मीद थी, और उन्होंने विश्व चैंपियनशिप में जीतकर अपने लिए जगह बनाई थी। ऐसा नहीं था कि उन्हें कोई दया में या भीख में ये जगह दी गई थी। ये बहुत दुखद है कि दोनों के बीच लड़ाई हुई और अब चाहे सच्चाई जो भी हो, षड्यंत्र या साजिश की बात जब की जा रही है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिल के कोने में किसी न किसी जगह पे एक सवालिया निशान रह जाएगा कि क्या सचमुच साजिश है।
ये मुमकिन है क्या ऐसा साजिश करना, जिस तरह की बातें उभर कर सामने आ रही हैं? क्या सियासत होती है कुश्ती में? मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ।
देखिए, सियासत तो नहीं होती, मगर एक अजीब प्रकार से दो लोगों के बीच, एक दो खेमों के बीच जो एक खाई पैदा हो गई, एक खाई बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये भारतीय खेल संघों और महासंघों की जो कारिस्तानी है, जिसको लेकर बार बार हम कहते रहे हैं कि इस तरह की चीज़ खेलों के लिए, विकास के लिए, खेलों के लिए, खिलाड़ियों के लिए अच्छी नहीं, उसी का एक नमूना है। बहरहाल, ये एक अलग बात है कि दोनों खेमों में आपस में लड़ाई है और दोनों खेमों में एक होड़ सी थी कि कौन पहुंचता है, मगर अब तो अगर दोनों में से कोई नहीं पहुंचता तो ऐसे में नुकसान और किसी का नहीं, इस देश का और इस देश के ओलंपिक आंदोलन से जुड़े खिलाड़ियों का है।
क्या कुछ उम्मीद बचती है नरसिंह के बाद? अभी कुछ ये जो प्रोसेस है, ये क्या होता है? वो कह रहे हैं कि मैं निर्दोष साबित हो जाऊंगा सुनवाई के दौरान, ये कैसे?
देखिए, उम्मीदों का दिया तो टिमटिमा रहा है, धीरे धीरे जल रहा है। कल जब सोमवार को दफ्तर खुलेंगे, जब सारी बातें सामने आएंगी, तब वास्तविकता सामने आएगी। मगर एक बात तो तय है, जो नाडा ने कहा है, नाडा ने जो बात कही है वो ये कि बी सैंपल टेस्ट जब हुआ तो वो सैंपल उनके सामने खोला गया और उस सैंपल में भी उन्हें पाया गया कि उन्होंने एनाबोलिक स्टेरॉयड प्रतिबंधित द्रव्य का सेवन किया था। ऐसे में कहाँ तक बात पहुँचेगी, कहाँ तक उनको छुटकारा मिलेगा इन आरोपों से, क्या वो जा पहुंच पाएंगे, ये कल पता लगेगा। लेकिन संभावना बहुत क्षीण हो गई है अब।
बहुत बहुत शुक्रिया, संभावना क्षीण हो गई, बता रहे थे वरिष्ठ खेल पत्रकार मरे नीरव जी। इसके बाद कार्यक्रम में हम आगे बात करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के जम्मू कश्मीर दौरे की, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं नेपाल की, जहां प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा है। सीधे काठमांडू से हमारे साथ फोन लाइन पर हम संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं बीबीसी नेपाली के संवाददाता केशी शरद से, शायद उनसे संपर्क हमारा अभी मुमकिन नहीं हो रहा, तो अभी हम बात कर लेते हैं। भारत प्रशासित कश्मीर के दौरे पर जो केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह गए थे, आज उनका दौरा पूरा हो गया। उनके दौरे का मकसद था जो घाटी में हालात चल रहे हैं उनको बेहतर बनाना। उन्होंने आज कहा कि जो हालिया हिंसा में लोग घायल हुए उनके इलाज का वो पूरा प्रबंध करेंगे और जिन सब लोगों से बात करने की ज़रूरत पड़ेगी सरकार को किया जाएगा, लेकिन सबसे पहले हालात सामान्य होने चाहिए। पूरा ब्यौरा वात्सल्य राय से।
अपना दो दिन का कश्मीर दौरा पूरा करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली लौटने से पहले श्रीनगर एयरपोर्ट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान जिस बात पर उन्होंने सबसे ज़्यादा जोर दिया वो ये थी कि घाटी में हालात को सामान्य बनाया जाए। उन्होंने कहा कि जिस पैलेट गन के कारण बहुत से लोग घायल हुए हैं वो पहले ही उसके स्थान पर अन्य विकल्पों का विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो घायलों को एक विशेष विमान से कश्मीर से दिल्ली लाया जाएगा और उनका पूरा इलाज होगा।
यदि उनका इलाज यहाँ ठीक तरीके से नहीं हो सकता है तो सारे इंजर्ड लोगों को वह दिल्ली भेजें, आवश्यक हुआ तो एम्स में मैं उनका ट्रीटमेंट कराऊंगा, हमारी सरकार एम्स में ट्रीटमेंट कराएगी। यदि बड़ी संख्या हुई तो मुझे यदि प्लेन से उनको ले जाना हुआ तो हम उनको स्पेशल प्लेन से भी ले जाएंगे दिल्ली।
हिजबुल कमांडर बुरहान वानी की मौत के बाद भड़के प्रदर्शनों में 45 लोगों की मौत से घाटी में तनाव है। राजनाथ सिंह के इस दौरे का मकसद सुरक्षा हालात का जायजा लेना और कश्मीरियों से संवाद करना था। हालांकि व्यापारियों समेत कुछ लोगों ने राजनाथ सिंह से मिलने से इनकार कर दिया था। राजनाथ सिंह ने कहा कि ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि इस समस्या का समाधान 10-15 दिन में हो जाएगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि हर मतभेद को बातचीत के जरिए ही सुलझाना चाहिए क्योंकि इसके अलावा कोई और दूसरा समाधान नहीं हो सकता। जब उनसे पूछा गया कि क्या सरकार अलगाववादियों से बात करेगी तो उन्होंने कहा,
जिनसे भी बात करनी होगी उनसे बात करेंगे, लेकिन पीस और नॉर्मलसी रिस्टोर होने दीजिए। यहाँ के मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, उनको विश्वास में लेकर ही हम कोई काम करेंगे।
राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान की भूमिका पर भी सवाल उठाया। कुछ इसी तरह की बात जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी की।
जब अपने घर में उनके बच्चे बंदूक उठाते हैं मदरसों के वगैरह, तो उनको ड्रोन से अटैक करते हैं और उसके बाद मिलिट्री कोर्ट में उनको फांसी देते। मुझे वहां लगा कि पाकिस्तान, जिसको कश्मीर के लोग बहुत हमदर्द नजर से देखते हैं, मुझे लगा कि कहीं इस वक्त उन्होंने बहुत ज्यादती की कि अगर वो हमारे बच्चों को ये उकसाते हैं कि अगर आप बंदूक उठाओगे एनकाउंटर में मारे जाओगे तो आप हमारे लीडर में, मुझे लगता है पाकिस्तान को भी ये पॉलिसी चेंज करनी चाहिए।
उधर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी राजनाथ सिंह से बात की। इस मुलाकात के बाद उन्होंने कहा,
The only issue that was discussed is the current situation in the valley, the concern that we have about the last 16 days, the situation that has developed.
सिर्फ घाटी के मौजूदा हालात पर चर्चा हुई। 16 दिनों से जो हालात हैं हम उन्हें लेकर चिंतित हैं। हम चाहते हैं कि लोगों को राहत मिले, लोगों पर जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग ना हो, पैलेट गन के इस्तेमाल पर फिर विचार किया जाए, कर्फ्यू में ढील दी जाए, मोबाइल सेवाएं बहाल हों, कम से कम पोस्ट पेड कनेक्शन की। वो इन सब बातों को लेकर सकारात्मक थे।
ये थे उमर अब्दुल्ला के शब्द। दो हफ्ते से भारत प्रशासित कश्मीर में तनाव बना हुआ है। अपने दौरे के दौरान राजनाथ सिंह ने आश्वासन कई दिए हैं, लेकिन इससे माहौल कितना बेहतर होगा ये आने वाले दिनों में ही जानकारी हो सकेगी।
ये थे वात्सल्य राय, रिपोर्ट सुना रहे थे आपको केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के कश्मीर दौरे को लेकर। और अब रुख करते हैं नेपाल का, जहां एक बार फिर राजनीतिक अस्थिरता के बादल घिरते दिख रहे हैं। केपी शर्मा ओली को प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा है। इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं काठमांडू से बीबीसी नेपाली के शरद केसी। शरद जी, क्या हुआ, ये किस मुद्दे पर इनको एकदम सरकार अपनी इस्तीफा देना पड़ा है? उनके समर्थक पार्टियों के लिए कौन से मुद्दे थे जिन पर उन्होंने अपना समर्थन वापस लिया है?
देखिए, अभी प्राप्त समाचार के मुताबिक प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने जो इस्तीफा दिया था वो स्वीकृत कर दिया गया है राष्ट्रपति कार्यालय के मुताबिक। और उन्होंने इससे पहले संसद में, पार्लियामेंट में वो जानकारी दी थी कि मैंने अभी कुछ देर पहले इस्तीफा दे दिया है अपने पद से। और इस मामले में इस्तीफा दिया कि संसद में, पार्लियामेंट में उनके खिलाफ, उनके सरकार के खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव दायर किया गया था और आज दिन से उसके ऊपर छलफल जारी था और आज वोटिंग होने वाला था। और सबसे इससे पहले नेकपा माओवादी केंद्र, इसका नेतृत्व भूतपूर्व माओवादी पार्टी के नेता प्रचंड, भूतपूर्व प्रधानमंत्री प्रचंड ने किया।
आप हमारे सुनने वालों को ये बताइए कि जो गठबंधन में मतभेद हुए उनकी क्या कुछ वजह रही?
नहीं, वो लोग, प्रचंड का आरोप है कि वो जो अपनी सहमति था, सहमति के खिलाफ में प्रधानमंत्री एकलौटी ढंग से आगे बढ़ने लगे थे, इसलिए मैं बाध्य होकर उस सरकार से वापस आ गया और उनके खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव दायर करने के लिए बाध्य हुआ, प्रचंड का वो आरोप था। लेकिन प्रधानमंत्री ने आज जवाब देते हुए संसद में उस सारे आरोप को खंडन किया और उनका कहना था कि उन्होंने एक महाभारत के पात्र अभिमन्यु को चर्चा मिलाते हुए कहा कि उसी तरह मुझे भी घेराबंदी किया गया। और जब सरकार ने खासतौर पर भारत की तरफ संकेत करते हुए राष्ट्रीय स्वाभिमान को ऊंचा रखते हुए और सभी अंतर्राष्ट्रीय शक्ति और सीने के राष्ट्रों के साथ समानता के आधार में संबंध को स्थापित करते हुए आगे जब स्वाभिमान के साथ सरकार आगे बढ़ रही थी, इसी वक्त इस सरकार को गिराया गया कहकर उन्होंने सांकेतिक रूप से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय शक्ति को भी अपने सरकार के खिलाफ के षड्यंत्र में शामिल हुए
जी। शरद केसी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि केपी शर्मा ओली तो अब इस्तीफा दे चुके हैं, इसके बाद अब आगे किस तरफ आपको नेपाल की सियासत जाती दिख रही है?
नहीं, देखिए, एक बात तो प्रश्न है कि नेपाली कांग्रेस जो सबसे बड़ा पार्टी है पार्लियामेंट में, दूसरा बड़ा पार्टी था केपी ओली की पार्टी, और पहला बड़ा पार्टी नेपाली कांग्रेस ने प्रचंड को प्रधानमंत्री बनाने में सहमत राजी कर दिया, उन दोनों पार्टी के बीच में सहमति होकर ही यह अविश्वास प्रस्ताव दायर किया गया था। और ये निश्चित था कि प्रधानमंत्री अगर वो अविश्वास प्रस्ताव फेस करते तो उनका सरकार गिर रही था, इससे पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इसलिए आगे रास्ता तो क्लियर है, माओवादी और नेपाली कांग्रेस के बीच में सहमति हो चुकी है, इसलिए उन दोनों सहित और भी पार्टी के बीच में सत्ता गठबंधन बनेंगी और कुछ दिन लगेंगे। उससे पहले राष्ट्रपति ने शायद आह्वान करेंगे कि राष्ट्रीय सहमति की सरकार बने संविधान के तहत, लेकिन आज प्रधानमंत्री के वक्तव्य और विपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेस के वक्तव्य को ध्यान रखते हुए ये कहा जा सकता है कि संभावना ज्यादातर यह है कि राष्ट्रीय सहमति नहीं और बहुमतीय सरकार ही बनेगी और माओवादी
जी
और नेपाली कांग्रेस के बीच
जी। लेकिन कुछ समय लगेगा इस पूरे प्रोसेस में, जैसा कि आपने बताया। ये थे काठमांडू से बीबीसी नेपाली सेवा के शरद केसी।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
बीबीसी हिंदी।
सलमान खान की फिल्म सुल्तान अपनी करोड़ों रुपए की कमाई के लिए फिलहाल चर्चा में है, लेकिन इस फिल्म का एक ऐसा किरदार है जिसने अपनी ओर सबका ध्यान खींचा है और वो है गोविंद, जो फिल्म में सलमान खान का जिगरी दोस्त है। गोविंद की भूमिका निभाई है दिल्ली के थिएटर कलाकार अनंत विदात शर्मा ने, जो पिछले कुछ सालों से मुंबई में अपना करियर बनाने की कोशिशों में जुटे हैं। अनंत विदात शर्मा ने शुरुआत की थी फिल्म गुंडेस के साथ। मुंबई में उनकी जिंदगी और करियर पर बातचीत की स्वाति बख्शी ने।
आपको जिस तरह का नोटिस मिला है सलमान खान की फिल्म के लिए, बहुत ही अद्भुत अपूर्व रिस्पांस है मेरे ख्याल से उनकी किसी फिल्म के लिए किसी ऐसे चेहरे को रिस्पांस इस तरह से मिलना।
नहीं जी, मैं खुद भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ जिस तरीके का रिस्पांस मिला है, और बड़ा बड़ा मैं आभारी हूँ दर्शकों का और सभी लोगों का जिन्होंने इतना काम को मेरे सराहा। तो यही कहना चाहूँगा, मैं गदगद महसूस कर रहा हूँ।
गदगद महसूस कर रहे हैं। लेकिन आपको इतनी तारीफ की उम्मीद थी या आप सरप्राइज्ड हैं कि इतना ऐसा आपने क्या कर दिया कि आपको लोगों ने इतना पसंद किया?
देखिए, दोनों ही बातें हैं। कोई भी जो एक्टर होता है, कलाकार होता है, ऐसी उसकी इच्छा होती है, उसकी ऐसी आकांक्षा होती है कि भाई उसके काम को सराहा जाए। लेकिन ये कभी नहीं मालूम होता है कि यही वो काम है और जो जिस वक्त हम कर रहे होते हैं कि यही वो चीज़ है जो कि इतनी ज़्यादा लोगों को पसंद आ जाएगी और फिर उसका रिस्पांस इस तरीके का होगा। और ये भी बात साथ ही साथ है कि इस कद्र पसंद आएगा लोगों को और इतना इस मात्रा में जो है वो तारीफ आएगी, ये बिल्कुल भी नहीं मुझे उम्मीद थी। ये ज़रूर मेरी उम्मीद से कहीं ज़्यादा है, जिसके लिए मैं, मतलब जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, गदगद महसूस कर रहा हूँ।
तो आपके लिए ये वो ब्रेक है वाकई में, आपको लगता है, जो बहुत कुछ बदल देगा? क्या ये वो जो सुनहरा वक्त होता है एक्टर्स के लिए, ये उसकी शुरुआत है? आपको ऐसा एहसास है?
ऐसा एहसास मुझे है थोड़ा सा, आसपास के लोग भी कह रहे हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ जो पूरी तरह से मेरे एहसास में है वो ये ज़रूर है कि अब कम से कम एक पहचान या जो आपके नाम को लोग एक बार अंडरलाइन करके सुनना चाहते हैं कि भाई क्या नाम है इस कलाकार का, अच्छा हाँ ये एक अभिनेता है जो कि यहाँ काम कर रहा है, तो आपका नाम कंसिडरेशन में आ सकता है, ये एक ज़रूर मेरे समझ में तो है। देखिए, अभी भी सुल्तान आ गए, ये सब हो गया, लेकिन अभी भी ऑफिशियली मेरे पास कोई काम है नहीं, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ।
क्या आपको लगता है कि दोस्तों को जो पेश किए जाने का अंदाज बदला है हिंदी सिनेमा में, वो कहीं ना कहीं इसके पीछे एक वजह है कि अब वो सिर्फ एक फर्नीचर टाइप के लोग नहीं हैं, वो बोलते हुए और अहम किरदार निभाते हुए नजर आते हैं, कहीं उसकी भी भूमिका है?
नहीं जी, उसकी भूमिका तो सबसे अहम है, और इसके लिए श्रेय जाता है उन सभी लेखकों को और उन सभी एक्टरों को भी जिन्होंने इससे पहले जो एक थोड़ी सी लहर बदली, जिसके अंदर जो सह कलाकार होते हैं फिल्मों में उनके किरदार बहुत अहम होने लगे। और इसका श्रेय अली को भी बहुत जाता है, जिन्होंने, जो कि फिल्म के निर्देशक भी हैं और लेखक भी हैं। शुरू में थोड़ा सा हिचकिचाहट थी मेरे भी मन में, बट जब मैंने अली का परसेप्शन सुना कि वो जिस तरह से परसीव कर रहे थे इस किरदार को और जिस तरह से वो दिखाना चाहते थे, न केवल सिर्फ मित्र का ही किरदार, बाकी जो बाकी किरदार भी हैं इस फिल्म के अंदर, जिस तरह से उसको लेके एक अप्रोच थी अली की, वो देख के मेरी बड़ी हिम्मत बढ़ी।
आप जैसा एक कलाकार जो थिएटर के बैकग्राउंड से आया है, वो सिर्फ इस तरह के कमर्शियल ही फिल्मों से जुड़ना चाहता है या आप वैसे किरदार भी करेंगे, जैसे मुझे सिर्फ नवाजुद्दीन सिद्दीकी इन दिनों याद आते हैं, तो इस तरह के किरदार जो सिर्फ उनको ऑफर किए जा रहे हैं इन दिनों या उन्हीं जैसे और एक्टर्स को मिल रहे हैं?
नहीं बिल्कुल, ये तो मतलब कहने की बात ही नहीं है। मैं तो यहाँ काम करने आया हूँ, किरदार अच्छा होगा तो बिल्कुल उसमें कोई शक की बात ही नहीं। हमारा खुद का मन बहुत करता है, मतलब किसी भी एक्टर का मन अंदर से खुद ही बहुत करता है। हम इमेजिन ही करते रहते हैं कितनी बार तो कि यार ऐसा कोई कैरेक्टर मिले, ऐसी कोई चीज़ करने को मिले, किरदार होते हैं। एक कमर्शियल फिल्मों का जो फ़ायदा है वो बात बस इतनी सी है कि मैं इसमें एक एग्जाम्पल के तौर पर कहूँ कि आपको मालूम है कि ये अरीना है, इस अरीना में सब लोग आएंगे। छोटी फिल्मों का मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि बाकी जो फिल्में हैं जिसके अंदर ज़्यादा अच्छे और बहुत अच्छा काम हो रहा है, वो भी धीरे धीरे इस स्तर पर आएं, और उसके लिए हम सबको मेहनत भी करनी पड़ेगी, हम सबको मिलके काम भी करना पड़ेगा।
आपने मेनस्ट्रीम सिनेमा की जो बात की, तो यही मेनस्ट्रीम सिनेमा है जो सुपरस्टार भी बनाता है और सलमान इसी वजह से सुपरस्टार हैं, तो कहीं अनंत आप सुपरस्टार बनना चाहते हैं? या अगर मैं थोड़ा रूड होकर पूछूं, तो आपको लगता है आप सुपरस्टार बनने का हुनर रखते हैं?
देखिए, मेरे पिताजी ने बचपन में एक बात कही थी बड़ी अच्छी, कि वो क्रिकेट ही देख रहे थे हम सब घर पे, तो उन्होंने बोला कि अभी ये कोई नया लड़का आया था, बोले अभी ये नया लड़का आया, ये मैन ऑफ द मैच बन गया, बोले इसे नहीं मालूम होगा कि मैं सचिन तेंदुलकर के साथ कभी खेलूंगा नहीं खेलूंगा क्या होगा, इसे सिर्फ बैट और बॉल मालूम है। मुझे मेरे काम का सिर्फ बैट और बॉल मालूम है, मैं मैन ऑफ द मैच बन जाऊँ या सचिन तेंदुलकर के साथ खेलते खेलते किसी दिन मेरी भी सेंचुरी पड़ जाए और वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाए, ये तो तय है। मतलब अगर आप खेलेंगे अच्छा और ईश्वर का आपके साथ मतलब पूरी कृपा रहे, अगर ईश्वर की और लोगों की दुआ रहे, तो कोई भी टोटल ऐसा नहीं है जो कि बैट से चेज नहीं किया जा सकता। तो मैं मेरिट पे, क्योंकि मेरी तैयारी हमेशा मेरिट की ही रही है और ये काम मेरिट का ही है, और उसके अंदर बाकी कई ऐसे आस्पेक्ट्स हैं जो कि लगते हैं, लेकिन वो आस्पेक्ट्स मेरे कंट्रोल में नहीं है। मेरे कंट्रोल में मेरा बैट है या मेरे कंट्रोल में मेरा क्राफ्ट है, मेरा काम है, वो मैं करूँगा, वो मैं पूरी शिद्दत से करूँगा। और उसको करते वक्त मैं कभी ये नहीं सोचूंगा कि सामने से जो बॉल डाल रहा है वो कौन है, मेरे साथ जो बैटिंग कर रहा है वो कौन है। मैं अपना गेम अपने हिसाब से खेलूँगा। अगर वो गेम लोगों को ऐसा लगता है कि भाई ये तो स्टार वाला गेम है, तो मैं बहुत आभारी हूँ। अगर उन्हें लगा कि ये सुपरस्टार वाला गेम है, तो मैं बहुत बहुत मतलब आभारी हूँ।
बिल्कुल। और आपने अपने क्राफ्ट और मेरिट की बात की है, तो आपकी चूंकि ये फिल्म बहुत चर्चा में रही है और बड़ी फिल्म है, तो इसके बारे में हरियाणवी जो इस्तेमाल हुई फिल्म में और मुख्य किरदारों ने की, उसकी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुई कि बहुत ऑथेंटिसिटी जिसे कहा जाता है, उससे वो देसी खुशबू जो है वो उसमें से प्रॉपर ऑथेंटिक मिसिंग थी, और एक आप ही थे जिसने अपनी भाषा पर पकड़ दिखाई, काम दिखाया। आपको नहीं लगता कि कमर्शियल सिनेमा जो है, जहां बात ऑथेंटिसिटी की आती है, उन बातों को उतनी गंभीरता से नहीं लेता जितना लेना चाहिए?
देखिए, इसमें अव्वल तो ये भी बात है कि जो इतनी बड़ी फिल्में होती हैं उसका एक ये भी ध्यान होता है कि भाई ये अब हरियाणवी एक्सेंट हमारा है ज़रूर, लेकिन ये फिल्म कलकत्ता में भी देखी जाएगी, ये चेन्नई में भी देखी जाएगी। तो एक तो डायरेक्टर्स का और सभी लोगों का ये होता है कि भाई आप इसे इतनी क्लिष्ट ना कर दें या आप बिल्कुल उतना ऑथेंटिक ना चले जाएँ, इसको थोड़ा हिंदी की तरफ रखें। दूसरी बात यह है कि अब वो मेरे ख्याल से हर एक व्यक्ति पे खुद पर है कि भाई कितना वो कर सकते हैं। हरियाणवी को लेके मैं ये ज़रूर कहूँगा कि भाई क्योंकि मैं दिल्ली में ही वहीं थिएटर किया है, स्कूल के वक्त से मैं मंच पे हूँ, तो मेरा एक ऑब्जर्वेशन, और क्योंकि वहाँ ये दो तीन डायलेक्ट्स हैं, और तो ये एक चीज़ ऐसी थी जो मेरे लिए आसान पड़ी।
अनंत, आप जैसे जो थिएटर के युवा जो कलाकार हैं और जब वो फिल्मों में सक्सेस पाते हैं और पहचान पाते हैं, तो बहुत सारे लोगों को हौसला मिलता है जो थिएटर करते हैं कि अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। पर मुझे ये बताइए कि क्या थिएटर के दम पर ज़िंदा रहना आज की डेट में भारत में बिल्कुल मुमकिन नहीं है, या हिंदी थिएटर करके?
मुश्किल है। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि नामुमकिन है, ऐसा नहीं है। मेरे टीचर हैं वहाँ केरला में, इट्टामनूर कन्नन जी हैं, वो कथकली करके अपना पूरा जीवन व्यापन कर रहे हैं, और कथकली का तो ऑडियंस भी सिर्फ केरला में ही है। हिंदी थिएटर भी हो रहा है जगहों जगहों पे, बहुत अच्छा हो रहा है। अंदरूनी इलाकों में भी जो हमारे कल्चरल थिएटर फॉर्म्स हैं वो बहुत अच्छे हो रहे हैं, लेकिन उसको उतना ऑडियंस नहीं मिल रहा है, उसके उतने नहीं। तो जीवन व्यापन तो देखिए, बात यह है कि कहीं पहाड़ों में एक मास्टर जी हैं, वो पाठशाला में पढ़ाते हैं, वो भी जीवन व्यापन तो कर ही लेंगे। लेकिन हाँ, जो आपके सवाल का जो उसका जो वो है मोटो, वो मैं समझ रहा हूँ, वो उतना फ्लरिश नहीं है अभी। मैं यूरोप भी अपनी ट्रेनिंग के लिए गया था, और मैंने यूरोप का थिएटर भी बहुत जितना हो सका करीब से देखा है, वहाँ काम भी किया है मैंने। और मैं ये मतलब उस वक्त भी मेरा अपने दोस्तों से, मित्रों से यहाँ आने के बाद ये कहना था कि भाई वहाँ आप थिएटर करते हुए, ऐसा नहीं है कि वो लोग बहुत फ्लरिश वहाँ भी कर रहे हैं, थिएटर में वहाँ भी शिकायतें हैं, लेकिन वहाँ जीवन व्यापन करना थिएटर के बेसिस पे काफ़ी आसान है, और वहाँ इज्जत बहुत है।
ये थे अभिनेता अनंत विदात शर्मा, जिनकी फिल्म सुल्तान इन दिनों खासी चर्चा में है, और इस फिल्म में उन्होंने सलमान खान के जिगरी दोस्त गोविंद का किरदार निभाया है, और उनसे बात कर रही थी बीबीसी संवाददाता स्वाति बख्शी। और कार्यक्रम के समापन से पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। संसद में अविश्वास प्रस्ताव का सामना किए बिना ही उन्होंने आज राष्ट्रपति विद्या भंडारी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। भारतीय पहलवान नरसिंह यादव डोप टेस्ट में फेल हो गए हैं। वे रियो ओलंपिक में 74 किलोग्राम भार वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले थे। जर्मन में अधिकारियों का कहना है कि शुक्रवार को म्यूनिख में गोलीबारी कर 9 लोगों की हत्या करने वाले डेविड अली सोनबोली पिछले एक साल से इस हमले की तैयारी कर रहे थे। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगान ने एक दफ़ा फिर मौत की सज़ा के लिए अपने समर्थन को दोहराया है। बांग्लादेश में पुलिस का कहना है कि उन्होंने चरमपंथी गतिविधियों में शामिल होने के शक में 4 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। 4 महिलाओं पर आरोप है कि वे इस्लामी संगठन जमातुल मुजाहिदीन के लिए बम विस्फोट की योजना बना रही थीं। बीबीसी समाचार।
तो इसी के साथ कार्यक्रम दिन भर का समय अब पूरा होने को है। ठीक 1.5 घंटे बाद आपसे फिर मुलाकात होगी। कार्यक्रम होगा घटना चक्र। दिन भर का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे तिलक भाटिया। अशोक कुमार को फिलहाल अनुमति दीजिए। नमस्कार।